मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल संडे को मैं एक कवि को पढ़ रहा था जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, जो रूमी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो रूमी है पर्शियन पोएट हैं, वर्ल्ड लेवल के पोएट रहे हैं और इनका जन्म लगभग 1200 के आसपास हुआ और 1275 के आसपास 1273 में उनका निधन हो गया। ये टर्की के रहने वाले थे और बहुत महान कवियों में माने जाते हैं और डेफिनेटली आपने भी रूमी का नाम सुना होगा, क्योंकि हमारे यहां जो सूफी परंपरा की जब बात होती है जिसमें ईश्वर को पाने के लिए प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये उसी परंपरा के महान कवियों में से एक हैं। रूमी साहब का मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाक्य पढ़ने को मिला। पहले तो मैं वह वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी तुम्हें अपने करीब ले जाए, जो कुछ भी तुम्हें अपने करीब ले जाए, निर्मल बना दे, वह राह सही है। देखिए, हम सब भटकते रहते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक का क्षेत्र हो, चाहे वह हमारे भौतिक जीवन का क्षेत्र हो, कि हम क्या करें, कौन सा रास्ता चुने, कौन सा हमारे लिए सही होगा। यहां ठीक है, रूमी जी आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए केवल वही रास्ता सही होता है जो रास्ता उसे अपने आप से मिला दे और उसे वह निर्मल बना दे, अंदर से कोमल बना दे, उसके फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर दे, जितनी भी उसके अंदर झुंझलाहट और क्रोध और निराशा, ईर्ष्या, ये जितने भी भाव होते हैं जो हमारे अंदर को कड़वाहट से भर देते हैं, उसको कठोर बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, उन सबको समाप्त कर दे, वही राह सही है। जैसे ही मैंने यह वाक्य पढ़ा तो सच पूछे मुझे गीता का ये एक वाक्य याद आ गया जिसमें कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए स्वधर्म की बात करते हैं और वो कहते हैं सीधे सीधे कि स्व के धर्म का पालन करना व्यक्ति के लिए हर हालत में अनिवार्य होता है और यदि स्वधर्म का पालन करते करते व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कर लेना चाहिए। अब आप देखिए कि जब हम गीता में स्वधर्म शब्द को पढ़ते हैं तो हम उसका अर्थ क्या लगा लेते हैं। उसका अर्थ हम इस तरह के धर्म से लगाते हैं कि मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, वो फलाना है, वो पारसी है। हम धर्म को इन बातों से जोड़ लेते हैं और फिर हमारे अंदर एक अलग किस्म की कट्टरता पैदा हो जाती है कि नहीं, मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कुछ भी करना चाहिए, कृष्ण ने कहा है, या मैं किसी दूसरे धर्म का हूं तो वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कहे। इनफैक्ट सच पूछिए तो जैसे ही धर्म में कट्टरता का तत्व आता है वो धर्म धर्म रही नहीं जाता, धर्म रही ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो है ही कोमल तत्वों से बना हुआ। जो दूसरों के प्रति उदारता का भाव पैदा कर सके वे ही धर्म के तत्व होते हैं। जो हमें कठोर बना दे, जो हमें निर्दयी बना दे, वो धर्म कैसे हो सकता है। तो फिर कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि स्वधर्म और स्वधर्म के पालन करने में अपनी जान दे देना भी ठीक ही ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, जब आप गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां धर्म की फिर आपको एक अलग तरह की परिभाषा जानने को मिलेगी। गीता में बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि हम सब का अपना अपना स्वभाव होता है, स्व का भाव। मेरे अपने भाव हैं, अपने इमोशंस और अपने थॉट्स हैं, आपके अपने इमोशंस और अपने थॉट्स हैं, इस धरती पर जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने भाव हैं। यहां मैं जो भाव की बात कह रहा हूं उसका मतलब केवल इमोशन से नहीं है, मतलब मेरा एक व्यक्तित्व, मेरी एक सोच, सब कुछ मिलकर भाव का निर्माण करते हैं और वो सबके साथ होता है। तो मेरा एक स्वभाव है, स्व का भाव, और इसी को एक में मिलाकर के हिंदी ने कहा स्वभाव। कृष्ण ने कहा है कि हम सबको अपने इस स्वभाव में रहना चाहिए, वो स्वधर्म है। इसी से बना है एक बहुत अच्छा शब्द स्वस्थ। देखिए, स्वस्थ, स्व प्लस स्थ, ये संस्कृत में संधि विक्षेप आप इसे कर देंगे तो हो जाएगा स्व में स्थित रहना, यानी अपने में ही स्थित रहना। जब हम अपने में स्थित रहते हैं तो हम स्व के भाव में रहते हैं, अपने भाव में रहते हैं। तो क्या हम ज्यादातर समय दूसरों में स्थित होते हैं? यस मित्रों, जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि सच बात यही है कि हमारा ज्यादातर वक्त दूसरों में स्थित रहने में बीत जाता है। हम अपने जैसा तो रहना ही नहीं चाहते, अपने जैसा तो हम बनना ही नहीं चाहते, हम हमेशा दूसरों का अनुकरण करना चाहते हैं। जो भी हमें प्रभावित करता है, जो भी हमें आकर्षित करता है, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं और अपने भाव को छोड़ बैठते हैं। निदा फाजली साहब का नाम आपने सुना होगा। निदा फाजली साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, शेर शायराना के अंदाज में कही थी उन्होंने कि यदि मुझसे मिलना चाहते हो तुम बाहर आकर मिलो मुझसे, क्योंकि मेरे घर में कोई और रहता है। देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे घर में आकर के मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे बहुत बनावटी तरीके से मिलूंगा, क्योंकि वहां बकायदे एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक तहजीब और ढेर सारी चीजें हैं जो मिलकर मेरे व्यक्तित्व को आडंबर वाला बना देंगी, पाखंड वाला बना देंगी। हाँ, अगर तुम बाहर आकर के मिलोगे तो इस तरह के किसी भी आडंबर और पाखंड की मुझे जरूरत नहीं होगी और मैं तुमसे बड़े खुले रूप में मिल सकूंगा और वह मेरा ओरिजिनल फॉर्म होगा। और मित्रों, हमारा जो अपना ओरिजिनल फॉर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, वह बहुत अधिक ऊर्जावान होता है। और सच पूछिए तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अक्सर आप सबकॉन्शियस माइंड की बातें सुनते रहते होंगे और यह भी सुनते होंगे कि वो बहुत शक्तिशाली होता है और उसे हमें जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट ये सबकॉन्शियस माइंड ही हम हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही हम हैं, लेकिन हम लगातार उस सबकॉन्शियस माइंड पर दूसरी चीजों के आघात करते रहते हैं, प्रतिघात करते रहते हैं, उसके ऊपर बोझ डालते रहते हैं और उससे हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी जो मौलिकता है, वो मौलिकता खत्म हो जाती है। और जैसे ही हमारी मौलिकता खत्म होती है तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर फिर विचलन का भाव पैदा होगा ही, बेचैनी का भाव पैदा होगा ही, क्योंकि अब हम वह कर रहे हैं जो हम हैं ही नहीं लेकिन हमें करना पड़ रहा है, चाहे हमारी मजबूरी हो, चाहे हमारी वो चॉइस हो, जो भी हो। तो इससे जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक बहुत अद्भुत तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ही विचित्र किस्म के दबाव को महसूस करता है। और आप कल्पना करके देखिए कि यदि कोई मेरे गले को दबा दे तो मेरे गले से कैसे सुरीली आवाज निकल सकती है। लगभग लगभग वही स्थिति हम सबकी जिंदगियों की होती जा रही है। तो मित्रों, रूमी का यह वाक्य मुझे इसीलिए बहुत पसंद आया था, रूमी साहब का, और मैं अंत में उसे फिर से दोहरा देता हूं। जो कुछ भी तुम्हें अपने करीब ले जाए, निर्मल बना दे, वह राह सही है। क्या खूब बात रूमी साहब ने कही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।